टॉपिक नंबर 30 देखते हैं, पेज नंबर 289, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम। टॉपिक है बेकार और बायसे मुशक्कत सवाल पर नाराज़गी। यानी बात लोग टाइम वेस्ट करते हैं सवालों की सूरत में, तो उस पर नाराज़ होना चाहिए ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। आप सवाल पूछने की इजाज़त देते थे और जो सवाल पूछते उस पर जवाब ज़्यादा भी देते। हम पीछे देख चुके हैं एक दो टॉपिक पीछे कि आप एक से ज़्यादा जवाब देते, डिटेल से जवाब देते, लेकिन फजूल सवाल और उसमें करने में तकल्लुफ़ को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और नाराज़ भी होते, जो उम्मत के लिए मुशक्क़त का सबब बनते सवालात उसके ऊपर आप खुश नहीं होते थे, क्योंकि लोगों के पूछने से फिर सब के लिए वो मसला मुश्किल बनता है। तो आइए चंद दलाइल देखते हैं। पहली दलील, फटके हुए ऊँट के मुतालिक सवाल पर नाराज़गी। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी से रिवायत नकल की, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलहु रजुलुन अनिल लुक्ता था। थोड़ा सा इसमें मुझे यार आपका शक लग रहा है, लुक्ता बोलते हैं गिरी पड़ी चीज़ को, तो लुक्ता लिखा हुआ है, पढ़ने में थोड़ा सा बोझल लग रहा है। तो सअलहु रजुलुन अनिल लुक्ता, इसको डबल चेक किया जा सकता है हदीस में से। फ़क़ाला ए रिफ़िका अहा अवक़ाला विया अहा व इफ़ासहा सुम्मा अर्रिफ़हा सनतन सुम्मस्तमी बिहा फ़इन जा रब्बुहा फ़अद्दिहा इलैही फ़क़ाला फ़दअल्लतुल इबिल फ़गदिबा हत्ता मर्रत वजनताहा अवक़ाला अहमर वजहुहु फ़क़ाला वमा लका वलहा माह सिका उहा बहिज़ा उहा तरीदुल मा व तर शजरा फ़जरहा हत्तल्ह रबुहा काल फ़दालतुलगनम काल लका अउली अखीका अउली ज़ीबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने गिरी पड़ी चीज़ के बारे में सवाल किया, आपने फरमाया इसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया इसका बर्तन और इसकी थैली, फिर एक साल तक इसकी शिनाख्त कराओ, फिर इसका मालिक ना मिलने की सूरत में इससे फ़ायदा उठाओ, अगर इसका मालिक आ जाए तो इसको दे दो। इस शख्स ने पूछा गुमशुदा ऊँट, इस पर आप नाराज़ हुए यहाँ तक कि आपके रुखसार सुर्ख हो गए, या इस रावी ने यह बयान किया कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया तुझे इससे क्या वास्ता, इसके साथ इसकी मुश्क है और सुम है, वो पानी के पास खुद आ जाएगा और दरख्त से खुद खा लेगा। यानी तुमने ऊँट को बांध के क्या करना है, जीती जागती चीज़ है, वो खुद ही अपना काम कर लेगा, लिहाजा तुम इसको छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक इसको मिल जाए। इसने दरियाफ्त किया अच्छा गुमशुदा बकरी मिल जाए, आपने फरमाया तेरे लिए है या तेरे भाई के लिए या भेड़िए के लिए, यानी अगर बकरी बेचारी को तुम नहीं पकड़ोगे या तुम्हारा भाई जिसकी वो है वो नहीं लेगा तो भेड़िया खा जाएगा। इससे क्या पता चला कि गुमशुदा ऊँट के बारे में आपने नाराज़गी का इजहार किया और इस पे डिटेल से बकरी का मसला बता दिया, जो ख़ुलासा निकला कि वो चीज़ जिसका नुकसान का डर हो या जिसको ना देखने से उसके भूखे मरने का या बड़े जानवरों के हाथों में आने का डर है उसको ले लो, फ़ायदा उठाओ, मालिक आ जाए तो उसको दे दो, लेकिन ऊँट बड़ी चीज़ है उसको खुला छोड़ दो ताकि किसी की चीज़ जो है वो उसको मिल जाए। इस पर इमाम ख़त्ताबी फरमाते हैं कि आपका गुस्सा साइल की कोताह फहमी पर था, इसने पेश नज़र मकसद ही को ना समझा, यानी उसके सामने जो मकसद था उसको समझ नहीं पा रहा था और गैर मुशाबे चीज़ पर क्यास किया। बस दफ़ा लोग बच्चों ले सवाल करते हैं ना, सवाल बराए सवाल, अच्छा फिर, अच्छा फिर, क्वेश्चनिंग स्टाइल होता है, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। दूसरा वाक़या, नापसंदीदा चीज़ों के बारे में ज़्यादा सवालों पर नाराज़गी है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू मूसा से रिवायत नकल की, सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया करीहा फलम उक्सिर अलैहि गदिबा सुम्म काल लिन्नासि सलूनि अम्मा शीतुम काल रजुल मन अबी काल अबू का खुजाफा फ़काम आखर फ़काल मन अबी या रसूलुल्लाहि फ़काल अबू का सालिम मौला शैबतन फलम रा उमर रदियल्लाहु अन्हु मा फी वजहिही काला या रसूल अल्लाही इन्ना नतूबु इलल्लाही अज़्ज़ वजल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नापसंदीदा बातों के बारे में सवाल किया गया। जब आपसे इसी किस्म के बहुत से सवालात किए गए तो आप नाराज़ हो गए, फिर लोगों से फरमाया अच्छा अब मुझसे जो चाहो पूछो, यानी आप इतने गुस्से में आ गए कि आपने कहा कि मैं अब तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगा। جب آپ سے اسی قسم کے بہت سے سوالات کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ ایک آدمی نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ خزافہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں سے آپ کو اس دور کی جہالت کا اندازہ ہوگا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو اکثر اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات ہوتے تھے، اور وہی سیم کہانی کہ آج کے دور میں الیگل پیدا ہونے والے بچے ماؤں کے بچے ہی ہوتے ہیں، باپ تو دور دور تک نہیں دکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ باتیں بتائیں تو اس سے ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک امبیرسمنٹ کی بات تھی۔ تو بہرحال حضرت عمر نے آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے رو برو توبہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں، فبرک عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانوں ہو کر عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور پچھلی حدیث کو ایک ہی باب میں ذکر کیا، اور اس کا عنوان باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا را ما یکرہ، نصیحت اور تعلیم کے دوران ناگوار بات دیکھ کر خفا ہونے کے بارے میں باب ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے باب کے عنوان کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا، لکھنے کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے خفا ہونے کو فیصلے یعنی قضاء کی بجائے واضح تعلیم کے ساتھ مخصوص کیا، یعنی قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے روکا گیا ہے، اور تینوں میں فرق یہ ہے کہ واضح کرنے والے کو غصے والے شخص کی صورت میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ ڈرانے والا ہونے کی بنا پر وہ بیزاری کا اظہار کرے، اور ایسے ہی شاگردوں کی کوتاہ فہمی پر تنقید کرتے ہوئے معلم کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی بات کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ کرنے کا حق استاد کو بھی ہے اور واز کرنے والے کو بھی ہے، لیکن قاضی جو ہے وہ غصے میں اگر کوئی فیصلہ کر دے گا تو وہ درست نہیں ہوگا، پھر اس میں غلطی ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک اور مقام پر جس باب میں رکھا وہ ہے، باب ما یکرہ من کثرت السؤال ومن تکلف ما لا یعنی، کثرت سوال اور بلا مقصد تکلف کو ناپسند کرنے کے بارے میں باب۔ امام نووی نے اس سے باب باندھا، باب توقیری ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی جو ہے نا یہ نفس سلم کے لیے آیا ہے، و ترک اکثار سوالی ہی ام لا ضرورت الیہ او لا یتعلق بہ تکلیف وما لا یقع و نحو ذلک۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ سے غیر ضروری سوالات نہ کرنے کے متعلق باب، یا جن سے کوئی شرعی ذمہ داری وابستہ نہ ہو، یا غیر وقوع پذیر باتوں کے متعلق، اور اسی قسم کے دیگر سوالات۔ تو بات واضح ہے کہ پوچھنے والے کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ کی اس بات سے مجھے کیسا لگا، اچھا لگا کہ برا لگا۔ ایسے ہی یس یس کہتے جائیں تو اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ تیسری مثال، منع کرنے کے بعد سوال پر ناراضگی۔ امام حاکم نے حضرت مرثد سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، قلت لأبي ذر رضی اللہ عنہ، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر لیلۃ القدر؟ فقال نعم، قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن لیلۃ القدر فی رمضان ام فی غیر رمضان؟ قال بل فی رمضان۔ قلت اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہی ما نبی ما کانو فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ أَمْ هِيَ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال سے سوال نکلتا آ رہا ہے نا، ایک کا جواب دیا تو اگلا سوال آ گیا۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي فِي أَيِّ رَمَضَانَ؟ قَالَ أَلْفِ الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا۔ فَقُلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ أَشْرٍ هِيَ؟ قال فغضب علی غضبا شدیدا ما غضب علی قبل ولا بعد مثله۔ قال لو شاء اللہ لأطلعکم علیہا التمسوها فی السبع الاواخر لا تسلنی عن شیء بعدها۔ میں نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، کیا رسول اللہ کو آپ نے شب قدر کا ذکر کرتے سنا، یعنی کہ آپ نے اللہ کے نبی سے شب قدر کی کوئی بات سنی؟ उन्होंने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे शब कदर के बारे में बतलाइए कि वो रमज़ान में है कि गैर रमज़ान में। आपने फरमाया, बल्कि वो रमज़ान में है। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए, क्या वो पिछले अम्बिया कराम के साथ थी या अम्बिया की वफ़ात के साथ उठाई गई या वो क़्यामत तक है? आपने फरमाया, बल्कि वो क़्यामत तक के लिए है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे बताइए कि रमज़ान के किस हिस्से में है? आपने फरमाया, आखिरी धाके में। अब इसके बाद मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल ना करना। सारी बात है, इतने सवालों के जवाब याद कैसे रहते हैं, और फ़ायदा कोई नहीं उसका, तो इसलिए आपने वहाँ पे रोक दिया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं आप पर अपने हक़ की आपको कसम देता हूँ, वो किस धाके में है? उन्होंने बयान किया, आप मुझ पर इतने शदीद नाराज़ हुए किस कदर ना पहले कभी हुए ना बाद में। आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला चाहते तो तुम्हें इसके बारे में मुत्तले फरमा देते, 7 आखिरी दिनों में इसको तलाश करो, इसके बाद किसी भी चीज़ के मुतल्लिक मुझसे सवाल ना करना। यानी इतने सवाल पूछ के फिर इंसान फिर अमल ना कर पाए तो ज़्यादा पकड़ होगी। तो आप देखिए कि 3 सवालात के जवाब दिए, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल करने से मना कर दिया। तो इससे भी रहमत भी तो पता चलती है ना, वक्त का ज़ियाँ भी है। बस लोग कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े सीधे थे, बस कोई जो कुछ कहता था आप मानते जाते थे, ऐसा नहीं होता। वक्त भी कीमती होता है और अगले की सोच भी डाइवर्ट होती है और गुस्सा भी आता है। इंसान होने के नाते आपको दूसरों की बातों से खुशी भी होती है, गुस्सा भी आता है, और अगर मूड बदल जाए तो कितने लोगों का नुकसान भी हो जाता है ऐसी बातों पर। चौथा और आखिरी वाक्य है इस बाब का, बायस मशक्क़त बनने वाले सवाल की ममानियत। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला, अय्युहन नासु क़द फ़ुरिदा अलैकुमुल हज्जु फ़हुज्जू, फ़क़ाला रजुलुन, अकुल्लु आमिन या रसूलुल्लाह, फ़सकता हत्ता क़ालहा थलासन, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लव कुल्तु नाम लवजबत वलमस्ततातुम, सुम्म काला ज़रूनी मा तरक्तुकुम, फ़इन्नमा हलक मन कान कबलकुम बिकसरति सुआलिहिम वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, फ़ैज़ा अमरतुकुम बिशयिन फ़ातू मिन्हु मस्ततातुम, वैज़ा नहैतुकुम अन शयिन फ़दऊहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम हज करो। एक शख्स ने कहा, क्या हर साल ए रसूलुल्लाह? आप खामोश रहे, यहाँ तक कि इस शख्स ने इसी बात को 3 बार दोहराया। इस पर आपने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता और तुम इसकी इस्तेआत ना रखते। फिर आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो जब तक कि मैं तुम्हें छोड़ूँ। यकीनन तुमसे पहले लोग कसरत सवाल और अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से इख्तलाफ़ की वजह से हलाक हो गए थे। बस जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूँ तो इस्तेआत के मुताबिक इस पर अमल करो, और जब मैं किसी चीज़ से रोकूँ तो इससे रुक जाओ। अब देखिए कि कितना क्लियर मैसेज है इस हदीस का, अगर कोई समझना चाहे। हाफिज़ इब्ने हजर ने इसकी शरह में लिखा कि कसरत सवाल और इसकी गहराई में जाने की ममानियत पर इस हदीस से दलील मिलती है। इमाम बगवी ने शरह सुन्ना में बयान किया कि सवालात 2 तरह के होते हैं। इनमें से पहली किस्म जो कि दीन के ज़रूरी मामलात के बारे में तालीमी मकसद के पेश नज़र हों, ऐसे सवालात जायज़ हैं, बल्कि अल्लाह ताला के इरशाद गरामी जिसका तर्जमा क्या है, और अगर तुम ना जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो, फ़सलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो हुक्म है कि जब ना पता हो तो पूछ लो। सहाबा किराम के अनफाल कलाला वगैरह के बारे में सवालात इसी ज़िमन में आते हैं। दूसरी किस्म के सवालात वो हैं जो कि तकल्लुफ़ और तसन्नो से किए गए हों और मुशक्क़त में डालने की खातिर हों। इस हदीस का मकसद इसी किस्म के सवालात हैं। तो बात वाज़े है, हर बंदा इस बात को अच्छी तरह समझता है कि कौन सी बात सुनकर किसको गुस्सा आता है, किसको गुस्सा किस बात पे नहीं आता, किस चीज़ को जज्ब करना। इससे ये पता चलता है कि कोई अच्छा उस्ताद हर चीज़ पे नज़र रखता है, वो स्टूडेंट्स की तरबियत भी करता है। गलत सवाल करने पे अगर वो नहीं टोकेगा तो नतीजा क्या होगा, वो गलत ही सवाल करते जाएंगे। तो तरबियत की खातिर कहीं रोक टोक कर दी जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अपने बच्चों को इंसान आला अदब और अखलाक सिखाता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ।